ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। सर्वशास्त्राब्दि पीयूष सर्ववेदैक सत्फल सर्वसिद्धांत रत्नाढ्य सर्वलोकैक दृक् प्रद सर्वभागवत प्राण श्रीमद्भागवत प्रभो कलिध्वान्तोदितादित्य श्रीकृष्णा परिवर्तित। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम स्कंद 7 अध्याय 10। अध्याय का शीर्षक है भक्त शिरोमणि प्रह्लाद। श्लोक संख्या 3। भृत्य लक्षण जिज्ञासु भक्तं कामेश्व चोदय भृत्य लक्षण जिज्ञासु भक्तं कामेश्व चोदय भवान संसार बीजेषु भवान संसार बीजेषु हृदय ग्रंथिषु प्रभो हृदय ग्रंथिषु प्रभो। भृत्यलक्षण जिज्ञासु भक्तं कामेश्व चोदय भवान संसार बीजेषु हृदय ग्रंथिषु प्रभो। भृत्यलक्षण जिज्ञासु भक्तं कामेश्व चोदय भवान् संसार बीजेषु हृदय ग्रंथिषु प्रभो। वृत्तिलक्षण जिज्ञासु शुद्ध भक्त के लक्षण प्रकट करने का इच्छुक भक्तम भक्त को कामेशु भौतिक जगत में जहां कामेच्छाएं प्रधान है अचोदया भेजा भवान आपने संसार बीजेशु इस जगत में उपस्थित रहने का मूल कारण हृदय ग्रंथिषु भौतिक सुख की इच्छाएं जो समस्त बद्ध जीवों के हृदय के भीतर है। प्रभो हे पूज्य भगवान। अनुवाद तात्पर्य कृष्ण कृपा श्रीमूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। हे मेरे आराध्य देव, ठीक है कह लीजिए, चूंकि हरेक के हृदय में भौतिक संसार के मूल कारण कामेच्छाओं का बीज रहता है, अतएव आपने मुझे इस भौतिक जगत में शुद्ध भक्त के लक्षण प्रकट करने के लिए भेजा है। तात्पर्य भक्तिरसामृत सिंधु में नित्य सिद्ध तथा साधना सिद्ध भक्तों के विषय में पर्याप्त विवेचना दी हुई है। नित्य सिद्ध भक्त इस संसार में अपने उदाहरण द्वारा भक्त बनने की शिक्षा देने के लिए वैकुंठ लोक से आते हैं। इस जगत के जीव ऐसे भक्तों से शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं और इस तरह भगवत धाम जाने में रुचि उत्पन्न कर सकते हैं। नित्य सिद्ध भक्त भगवान के आदेश से वैकुंठ लोक से आते हैं और अपने उदाहरण द्वारा यह दिखलाते हैं कि किस तरह शुद्ध भक्त बना जाए। अन्याभिलाषिता शून्यम। इस जगत में आने पर नित्य सिद्ध भक्त भौतिक भोग के प्रलोभनों में नहीं आता। इसके सर्वोत्कृष्ट उदाहरण महाभागवत भक्त प्रह्लाद महाराज है, जो नित्य सिद्ध अर्थात महाभागवत थे। यद्यपि उनका जन्म नास्तिक हिरण्यकश्यपु के परिवार में हुआ था, किंतु वे किसी तरह के भौतिक भोग के प्रति आसक्त नहीं थे। भगवान चाहते थे कि प्रह्लाद महाराज शुद्ध भक्त के लक्षण प्रकट करें, अतएव उन्हें भौतिक वर स्वीकार करने के लिए फुसलाना चाहा, किंतु उन्होंने स्वीकार नहीं किया, अपितु उन्होंने अपने निजी उदाहरण से शुद्ध भक्त के लक्षण प्रकट किए। दूसरे शब्दों में भगवान न तो स्वयं अपने शुद्ध भक्त को इस भौतिक संसार में भेजना चाहते हैं, नहीं भक्त को यहां आने में कोई भौतिक प्रयोजन रहता है। जब भगवान स्वयं इस भौतिक जगत में अवतार के रूप में आते हैं तो वे भौतिक परिवेश से आकृष्ट नहीं होते और उन्हें भौतिक कार्य से कोई मतलब नहीं रहता। फिर भी वे अपने निजी उदाहरण से सामान्य व्यक्ति को भक्त बनना सिखाते हैं। इसी प्रकार जो भक्त परम भगवान के आदेश से यहां आता है, वह भी अपने निजी आचरण से दिखाता है कि शुद्ध भक्त कैसे बना जाए। इसलिए शुद्ध भक्त सभी जीवों के लिए, जिनमें ब्रह्मा भी सम्मिलित है, व्यवहारिक उदाहरण होता है। ओम अज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामयं ददाति स्वपदान्तिकम् वन्देहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्री विशाखान्वितांश्च नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे असाधु साधु तादाहिन्नाति नीचो च तारक हानमुञ्च कदाचिन्मा प्रेम्णा हृत्कण्ठयो स्फुरः प्रेम्णा हृत्कण्ठयो स्फुरः हरे कृष्ण। सर्वप्रथम समस्त उपस्थित भक्तों के चरण में सादर वंदन प्रणाम करते हैं, सभी से कृपा याचना करते हैं कि हम श्रीमद् भागवत के इस अत्यंत मंगलमय पावन चरित्र प्रह्लाद नरसिंह के भाव को हृदयंगम कर सके। लक्षण जिज्ञासुर भक्तम कामेश्व चोदयत भवान संसार बीजेशु हृदय ग्रंथिषु प्रभो। श्रीमद् भागवत सप्तम स्कंद के अंतर्गत प्रह्लाद महाराज के चरित्र का श्रवण किया जा रहा है। आज 1 फरवरी, ठीक 1 महीना हुआ है, ठीक 1 महीने पहले 1 जनवरी था और यही समय था। इस समय हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ था कि हम इसी समय हम नरसिंह क्षेत्र जिसे कहलाते हैं ज्वाला नरसिंह, उनके दर्शन इस समय शायद मैं कर रहा था अहोबिलम धाम में। बहुत विशाल वहां पर चारों ओर पर्वत थे और भक्तगण बता रहे थे। अभी नरसिंह क्षेत्र कहलाता है, एक समय था जब वो हिरण्यकश्यपु क्षेत्र कहलाता था, हिरण्यकश्यपु का ही राज्य था वो उस दक्षिण क्षेत्र में, दक्षिण भारत। ज्वाला नरसिंह, फिर उग्र स्तंभ भी आता है वहां पर, ऊंचा पर्वत है ऐसे, लगभग बहुत चढ़ाई होती है जिस पर चढ़ा जाता है। और इस प्रकार कथन है, मान्यता है कि वही स्थान है जहां पर वो स्तंभ जब फटने पर भगवान नरसिंह भगवान प्रकट हुए थे। तो नौ भिन्न भिन्न रूप है, ज्वाला नरसिंह, योग नरसिंह, अहोबिला नरसिंह आदि। तो जब यह प्रसंग मैं देखा तो मुझे वहां स्मरण आया जहां पर प्रह्लाद महाराज के भाव को, प्रह्लाद महाराज के हृदय के पवित्र भाव को भगवान नरसिंह देव प्रकाशित करना चाहते हैं। दोनों अर्थ है वैसे इसके। एक अर्थ जो यहां बतलाया गया है, भगवान का ही नाम है एक, भक्ता नाम मानवर्धन, भक्त सदैव भगवान की महिमा का गान करने में तत्पर रहता है, वैसे ही भगवान भी सदैव भक्त की महिमा को गान करने के लिए तत्पर होते हैं। तो आवश्यकता नहीं थी यहां पर इस नवम अध्याय के अंत में जहां पर प्रह्लाद स्तुति संपन्न हुई, भगवान नरसिंह देव प्रसन्न हुए हैं, तो जानते तो थे प्रह्लाद के भाव को कि प्रह्लाद क्या कहेंगे, परंतु फिर भी तथापि उन्होंने कहा कि मांगो जो मांग सकते हो। और ये श्लोक संख्या 2 से श्लोक संख्या 7 तक, लगभग 6 श्लोकों में प्रह्लाद महाराज बहुत सुंदर अपने भाव बतलाए हैं, जिसके पूर्व के श्लोक से प्रारंभ हुआ, मामाम प्रलोभय, कृपया मुझे आप प्रलोभन मत दीजिए, मुझे आकर्षित मत कीजिए संसार के भोग के प्रति। श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में नित्य सिद्ध, साधना सिद्ध आदि के विषय में बतलाए। तो मैं स्मरण कर रहा था जहां पर नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर नीलाचल क्षेत्र में श्री जगन्नाथपुरी धाम में भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के साथ जब संवाद करते हैं, तो वहां पर भी वे अपने संवाद के प्रारंभ में जीव तत्व का जब चर्चा किए तो वहां पर बतलाते हैं, चिदधर्मावशतः जीव स्वतंत्र गठन संख्याय अनंत सुख तार प्रयोजन। श्री हरिनाम चिंतामणि नामक ग्रंथ में हरिदास ठाकुर चैतन्य महापुरुष से जीव के विषय में बता रहे हैं। पहले भगवान के तत्व को बतलाया गया, भगवान के नाम रूप गुण लीला और धाम की दिव्यता के विषय में बताया गया है, और तत्पश्चात बताते और एक चिन्मय कौन सी वस्तु, तो चित अनुसूर स्वरूप जीव वैभव प्रकार। यह जीव आत्मा है, यह भी एक आध्यात्मिक भगवान की शक्ति है, और विशेषता क्या है इसकी, तो वो बताते चिद धर्म वशतः जीव स्वतंत्र गठन। भगवान के जो धर्म है, भगवान का गुण धर्म जैसा ही गुण धर्म इस जीव का है, तो इस जीव में भी एक विशेष स्वतंत्रता है। संख्याय अनंत सुख तार प्रयोजन, जीव संख्या में अनंत है, एक में प्रयोजन उसके समस्त कार्य का, या उसका गुण धर्म कौन सा है, तो सुख। अब सुख के ही दो विभाजन वे किए हैं, से सुख हेतु यार कृष्णेर वरिलो कृष्ण पारिषद मुक्त रूपे ते रहीलो। ये बहुत महत्वपूर्ण एक विषय, बद्ध अवस्था और मुक्त अवस्था के विषय में। बद्ध का मूल बीज क्या है? यहां पर शब्द आया था संसार बीजेशु। निरंतर हम जितना भजन कर रहे हैं, साधन किए जा रहे हैं, भक्ति के भिन्न भिन्न अंगों का अनुशीलन किया जा रहा है, अंततः मुक्त होने के लिए संसार के बंधन से। तो संसार का बंधन का बीज क्या है और मुक्त अवस्था का लक्षण क्या है? तो वहां पर उसी बात को हरिदास ठाकुर कह रहे, से सुख हेतु यार कृष्णेर वरिल कृष्ण पारिषद मुक्त रूपे ते रहिलो। जो श्री कृष्ण के शरण को ग्रहण करता है, श्री कृष्ण का आश्रय लेता है और श्री कृष्ण के सुख हेतु कार्य करता है, उसको कहा गया कृष्ण पारिषद। भगवान श्री कृष्ण का परिकर कहलाता है और शाश्वत रूप से मुक्त रहता है, इसलिए उसको कहते हैं नित्य मुक्त। तो दो विशेष गुण है यहां पर, श्री कृष्ण का आश्रय लिया है और श्री कृष्ण के आश्रय लेकर श्री कृष्ण के सुख हेतु जिसकी प्रत्येक चेष्टा हो, कृष्णार्थ अखिल चेष्टा, या जिसे अन्यत्र कहा जाता है तत्सुख सुखित्वम। अब अन्य कौन से जीव है? तो वहां पर कहते यार पुना निज सुख करिया भावना पार्श्वास्तिता माया प्रतिकरिल कामना। परंतु कुछ जीव है, एक जीव का प्रकार बतलाया गया है जो श्री कृष्ण का अनन्य आश्रय लेकर कृष्ण संतोष कृष्ण सुख के लिए चेष्टा करते हैं, इच्छा करते हैं। अन्य कुछ जीव है जो निज सुख, यही शब्द है वास्तविक इस संसार के बंधन के बीज, निज सुख शब्द है। यार पुनः निज सुख करिया भावना पार्श्वस्थिता, बगल में ही भगवान श्री कृष्ण के बगल में कौन है? माया है। पार्श्वस्थिता माया प्रति करिल कामना, निज सुख की भावना जैसे आई तत्क्षण वह माया की ओर आकर्षित हो गया और उसी को फिर कहते हैं सही सब नित्य कृष्ण बहिर्मुख हैलो देवी धामे माया कृत शरीर पाइलो। सही ऐसे जीव जो निज सुख की इच्छा करते हैं वे कृष्ण बहिर्मुख हैलो, भगवान श्री कृष्ण से विमुख हो जाते हैं और देवी धाम में, देवी धाम मतलब इस जगत को देवी धाम कहा गया, इस जगत में वृंदावन धाम नहीं, वृंदावन से परे, आप तो देवी धाम में नहीं है, आप तो श्री कृष्ण के निज धाम में है। तो देवी धाम में माया कृत शरीर पाइल और फिर इस माया के द्वारा रचित इस देह को प्राप्त किया। तो मूलतः इस संसार में भक्त लोग बार बार जब आपस में आदान प्रदान करते तो कहते प्रभु जी कृपा कीजिए, कुछ कृपा कीजिए कि हम भी शुद्ध हो जाए, भगवान की कृपा हो हम पे, हम हमारा हृदय शुद्ध हो। कथा करते समय कई बार भक्त लोग कहते कि मैं अपनी शुद्धिकरण के लिए कह रहा हूं। अब ये शब्द बहुत अधिक प्रयोग किया जाता है पुनः पुनः, अपना शुद्धिकरण के लिए, शुद्धिकरण के लिए मैं शुद्ध होना चाहता हूं, शुद्ध भक्त बनना चाहता हूं। प्रश्न उठता है शुद्ध मतलब होता क्या है, ये शुद्धि मतलब क्या है, ये कुछ समझ में तो आना चाहिए ना। केवल शब्द को जिसको कहते हैं लिप सर्विस कहा जाता है, केवल मुख से कह दिया शुद्धि शुद्धि शुद्धि, परंतु आंतरिक रूप से समझ में ही नहीं आया शुद्धि मतलब क्या। या अशुद्धि क्या है, तो वास्तविक उसी को यहां पर हरिदास ठाकुर शब्द है, अशुद्धि है निज सुख की भावना। और वास्तविक शुद्धि मतलब क्या है, वास्तविक शुद्धि मतलब केवल श्री कृष्ण का सुख, श्री कृष्ण का आह्लाद, श्री कृष्ण की प्रसन्नता का जो भाव है, इसी को वास्तविक शुद्धि कहा गया है। कई बार बहुत लोग स्नान करते हैं ना, प्रतिदिन स्नान किया जाता है, और स्नान करते समय शरीर का मार्जन करते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार कुछ कुछ साबुन है, कोई शैम्पू है, इसका प्रयोग किया जाता है। मैं एक होम्योपैथी डॉक्टर से मिल रहा था और उसने एक बहुत अच्छी बात बताई, बोले कि वास्तविक व्यवहारिक रूप से देखा जाए तो जितने आजकल के तथाकथित जो साबुन आते हैं, जो शैम्पू आते हैं, जो लगाया जाता है स्नान करते समय, किस लिए लगाया जाता है प्रश्न उठे तो कोई कह सकते कि शरीर में काफी दुर्गंध हो जाती है, शरीर गंदा हो जाता है, उसको स्वच्छ करने के लिए। वे बताए थे वास्तविक इससे स्वच्छ कुछ होता नहीं है, उस सबसे बताए थे कैसे कई प्रकार के जो त्वचा के रोग हैं, जिसको स्किन डिजीज कहते हैं, वो इससे आते हैं, बहुत अधिक जो साबुन आदि का प्रयोग किया जाता है। प्राकृतिक रूप तो कह रहे थे गोबर होता है, गौमूत्र आदि का प्रयोग किया जाता है। जितने तथाकथित आधुनिक संसाधन बनाए जा रहे, ये कुछ वास्तविक लाभ प्रदान नहीं करते, कहने का भाव ये था। तो शरीर के अंदर मैं जो कह रहा था कि यहाँ जो साबुन आदि प्रयोग किया जाता है कि ताकि शरीर की जो दुर्गंध निकल सके, प्रश्न यह उठता है पुनः, ये जो शरीर होता है, शरीर में दुर्गंध जो होती है, दुर्गंध रहती है ना, नवद्वारे पूरे देह, भिन्न भिन्न द्वारों से निरंतर जो दुर्गंध आती रहती है, प्रश्न है कि दुर्गंध आती क्यों है, शरीर में जो दुर्गंध होती है किस कारण से आती है। तो एक बहुत बहुत सुंदर व्याख्या की बता रहे थे, तब अच्छा लगा ये भाव, दुर्गंध है कौन सी इस शरीर में। शरीर जो पंच महाभूत से है, जल पृथ्वी, जल अग्नि वायु आकाश, सभी को अलग अलग आप देख लीजिए, पृथ्वी में कोई दुर्गंध होती है? अच्छा, जल में दुर्गंध है, वायु में, पृथ्वी में, आकाश में, वास्तविक देखा जाए तो जितने पंच महाभूत आदि है, इसमें किसी में दुर्गंध तो है ही नहीं। और ये पंच महाभूत से मिश्रित ये शरीर है तो दुर्गंध आ कहां से रही है? तो वहां पर बतलाया जाता है वास्तविक दुर्गंध है इस जीव के हृदय में जो इच्छाएं हैं, यही मूल दुर्गंध है। इस संसार के जो कामनाएं हैं वह सबसे बड़ी दुर्गंध है, और वो इच्छाएं कामनाएं यदि निकल जाए, जब जीव निष्काम हो जाता है, कोई कामना न हो, तो स्वतः उसका केवल आंतरिक नहीं बाह्य अस्तित्व भी पवित्र और सुगंधमय होने लगता है। जिस तरह से कई भक्त जानते होंगे, वैसे ब्रह्मचर्य आदि के विषय में जब वैदिक ग्रंथों में बतलाया जाता है, जो कायन मनसा वाचा तीनों प्रकार से ब्रह्मचर्य के द्वारा अपने जीवन को पवित्र रखता है, उसके शरीर में एक विशेष सौगंध आती है, इस तरह से बतलाया जाता है। जो जितना अधिक भगवान के निकट रहता है, जितना अधिक उसके जीवन में शुद्ध सत्व का अधिक प्राधान्य होता है, उतना अधिक उसके शरीर में आप देखेंगे, एक कभी कभी शुद्ध भक्त है, वरिष्ठ भक्तों को अगर आप कोई देखेंगे सन्यासीगण, हम कभी सुने भी है ऐसे कथाओं में, श्रील प्रभुपाद जी के विषय में भी, जो श्रील प्रभुपाद की निज सेवा करते थे भक्तगण, वे बतलाते कि श्रील प्रभुपाद, या कई बार कुछ ऐसे आप वरिष्ठ साधु संतों के जब समीप जाए तो उनके शरीर में विशेष एक तो आभा मंडल तो निश्चित रूप से रहता ही है, साथ ही में एक सुगंध भी होती है एक विशेष प्रकार की। हालांकि भगवान का ही स्वरूप है श्री ऋषभ देव, हम जानते हैं, परंतु संसार में कुछ शिक्षाएं देने के लिए वे प्रकट हुए। तो उनके भी जीवन में देखते हैं कि जब समस्त इच्छाओं संसार की इच्छाओं से जीव पवित्र हो जाता है तो इतनी उसमें पवित्रता आती है कि उसके शरीर की तो दूर की बात रही, उसके मल में से भी सुगंध आती है। तो दुर्गंध है कौन सी वास्तविक इस संसार में? ये संसार की इच्छाएं, ये संसार की कामनाएं जो कभी वास्तविक अंत तो होना नहीं है। जिस तरह से ययाति महाराज के शब्दों में कहा जाए तो यत पृथिव्याम विरहीयवम हिरण्यम पशव स्त्रिय न दुह्यंती मन प्रीतिम पुंसम काम हतस्यते। कि समस्त जगत के जितने भोग है, समस्त जगत में जितना ऐश्वर्य है, समस्त जगत में जितना धन है, जितनी संपत्ति है, जितने स्त्री आदि है, जितने पशु है, जितना स्वर्ण है, समस्त जगत का पूरा भोग ले जाकर एक जीव को यदि दे दिया जाए तो समस्त जगत का भोग मिलाकर भी एक जीव को संतुष्ट नहीं कर सकता है। जिस तरह से वृंदावन में एक भक्त है, वो सुंदर दास नाम के, जिन्होंने कुछ अच्छे वचन कहे, तो उनके एक शब्द है, तीन ही लोक आहार कियो सब, सात समुद्र पियो पुनि पानी, और जहां तहां ताकत डोलत, काड़त आँख डरावत पानी, दात दिखावत जीव हिलावत, याहित में यह डाकिनी जानी, सुंदर खात भये कितने दिन, हे तृष्णा अजहु न अघानी, हे तृष्णा अजहु न अघानी। हे तृष्णा, इस संसार की जो भोग की प्यास है आज तक भरी नहीं, तीन ही लोक आहार की यो तब, कितना खाया होगा, कितने जन्मों से खा ही रहे हैं। कोई व्यक्ति भी काम करते रहता है तो उसको पूछते हैं कि किस लिए काम करते, बोलते पापी पेट का सवाल है। संसार में, वृंदावन की नहीं कह रहा हूं, संसार में लोग यही कहते हैं, पेट के लिए इतना कुछ किया जा रहा है। बहुत बड़ा आश्चर्य, संसार में जीवन के प्रारंभ से अंत तक अहर्निश परिश्रम किया जा रहा है उस पेट को भरने के लिए, परंतु आज तक कभी किसी का पेट भरा ही नहीं है। पेट भरता नहीं ना, सुबह भरते तो शाम तक खाली हो जाता है, दोपहर तक ही 3 बजे तक खाली हो जाता है, और खाली नहीं हुआ तो फिर डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, पेट खाली नहीं हो रहा है। इसलिए तीन ही लोक आहार कियो सब, सात समुद्र पियो पुनि पानी, सात समुद्र का जल पी लिया जाए, इतना संसार में इतना कुछ देखा जाए, तो संसार को देख लिया, संसार को भोग लिया, परंतु अनुभव क्या है? सुंदर खात भये कितने दिन, हे तृष्णा अजहु न अघानी। कितना खाया, कितना भोग किया, परंतु तृष्णा तो कभी पूर्ण होती ही नहीं इस संसार के भोग की। आगे वो कहते हैं, ये मम देश विलायत है गज, ये मम मंदिर, ये मम थाती, ये मम मात पिता पितु बांधव, ये मम पूतसु, ये मम नाती, ये मम कामिनी कैली करनीत, ये मम सेवक है दिन राती, सुंदर ऐसे ही छाड़ी गयो सब, तेल जरो सुबुझी जो बाती। इस संसार में ये सब अपना जो व्यक्ति इकट्ठा करता गया, ये मेरा घर है, ये मेरा देश है, ये मेरी संपत्ति है, ये मम मात पिता पुनि बांधव, ये मेरे माता, ये मेरे पिता, ये मेरे बांधव, ये मम पूतसु, ये मम नाती, ये मेरे पुत्र पौत्र आदि है, ये मम कामिनी केली करैनित, ये मम सेवक है दिन राती, ये जिनके साथ मैं दिन रात भोग आदि करता हूं, ये स्त्री है, ये मेरे सेवक है, सुंदर ऐसे ही छाड़ी गयो सब, तेल जरो सुभूजी जो बाती। तेल समाप्त होने जैसे बाती बुझ जाती है, ऐसा कहने वाले सब आए और चले गए इस संसार में। जिस तरह से श्रील प्रबोधानंद सरस्वती के शब्दों में कहा जाए तो वे कहते हैं अपने मन से कहे हैं। कैसा हो प्रारंभ है? किम भ्रातुर तव निमिलतोसि, ऐसे कुछ शब्द आते हैं। वृंदावन महिमामृत के अंतर्गत वे प्रबोधानंद सरस्वती अपने मन से कहते, हे मेरे मन, तू नित्य प्रति निरंतर इस संसार में क्या कर रहा है? इन आंखों को पलकें खुलती है और बंद होती है, फिर खुलती है फिर बंद होती है, खुलती है बंद होती है, निरंतर यह क्रिया चल रही है। परंतु हे मेरे मन, कभी विचार किया है? बहुत ही शीघ्र ऐसा एक जीवन में क्षण आने वाला है। कौन सा क्षण? जब ये पलके जो बंद हो रही है खुल रही है, बंद हो रही है खुल रही है, वो बंद होंगी और फिर कभी नहीं खुलेंगी। और जिस क्षण वो पलके बंद हो गई पूर्णतः, तब कौन सी माता, कौन सा पिता, कौन सा घर, कौन सा नाम, कौन सी प्रतिष्ठा, कौन सा ज्ञान, कौन सा ऐश्वर्य, कौन सा अहंकार, सब ऐसा कैसे ही धरा रह जाएगा। तो कहने का तात्पर्य, इस संसार का यह जो बीज है, इस संसार की सुख की कामना, बहुत अधिक संसार में भोग की इच्छा बनी रहती है जो सहजता से जाती नहीं। अन्यतर कहा जाता है, विश्वामित्र पराशर प्रभुतयो वाताम्ब पूर्णाशना तेपी स्त्री मुख पंकजम सुललितम दृष्ट्वैव मोहं गतः शाल्यन्नम सगृतम पयोदधियुतम भुंजन्ति ते मानवा श्लेषामिन्द्रिय निग्रहो यदि भवेत् विन्ध्येतरे सागरम। वैराग्य शतक के अंतर्गत कहा गया है, इस संसार में कैसे बड़े बड़े त्यागी तपस्वी है, विश्वामित्र पराशर प्रभुतयः। विश्वामित्र की कैसी तपस्या थी, कैसा त्याग था, कैसा इंद्रिय निग्रह था, पराशर आदि कैसा उनका जीवन था। वाताम्ब पर्णाशना, वाता अंबु पर्णाशना। कल्पना कीजिए, आपको आज प्रातः काल कहा जाए आप सभी के लिए महाप्रसाद है, और प्रसाद में यही आपकी डाइट रहने वाली है। कौन सी? वात, वायु। ऐसे ऋषि मुनि हुए हैं जो वायु का पान करके केवल जीवन निर्वाह किए। कल्पना कीजिए, आपको प्रसाद में बकेट दे दी जाए, खाइए हवा जितनी खानी है। वात अंबु जल, और पर्ण, पर्ण मतलब सूखे जो पत्ते होते हैं। ऐसा जिनका जीवन रहा है, जो वायु जल और सूखे पत्तों के द्वारा जिन्होंने अपना जीवन यापन किया है, बहुत बड़ी बात है। कहने में कभी कभी हम ऋषि मुनियों की कभी कभी परिहास भी कर देते हैं, भक्त तो उससे श्रेष्ठ होते हैं, परंतु ऋषि मुनि होना भी कोई खेल की बात नहीं है। अभी तो श्रील प्रभुपाद जी की अनुकंपा है कि हम आसमान से गिरे वृंदावन में हट के। ऐसे कोई साधु संत जैसा भाग्य तो था नहीं। जैसे श्रील प्रभुपाद से पूछा किसी शिष्य ने कि हमारा कौन सा ऐसा सुकृत था, तो श्रील प्रभुपाद जी के वास्ते कि आपका भाग्य था ही नहीं, मैंने आपको भाग्य प्रदान किया है। तो ऐसे ऋषि मुनि जिन्होंने बहुत इंद्रिय निग्रह आदि भी किया, उनके विषय में कहा जा रहा है, विश्वामित्र पराशर प्रभुतयो वाताम्बु पर्णाशना तेपी स्त्री मुख पंकजम सुललितम दृष्ट दृष्ट एव मोहम गतः। ऐसे जिन्होंने समस्त संसार के भोग को त्याग कर वन में पर्वतों पर जाकर जिन्होंने तपस्या की, वे भी यदि तेपी स्त्री मुख पंकजम सुललितम, इस संसार का जो आकर्षण है, पुरुष स्त्री आदि का आकर्षण उन्हें भी मोहित कर देता है, तो फिर अन्यों के विषय में क्या कहा जाए? कौन से? शाल्यन्नम सगृतम पयोदधियुतम भुंजन्ति, जो बढ़िया बासमती का चावल, स्वीट राइस, अन्नम सगृतम और घी के साथ में बढ़िया मेवा मिष्ठान खा रहे, रबड़ी पी रहे, कैसी कल्पना की जा सकती उनसे। ते इंद्रिय निग्रहो यदि भवेत विंध्य तरित सागरम, जैसे विंध्याचल पर्वत समुद्र पार कर ले, वैसे ही बढ़िया खान पान करने वाले यदि इंद्रिय निग्रह कर ले तो वह अत्यंत कठिन है। तो कहने का भाव एक जो वैसे तो काफी कुछ मन में भिन्न भिन्न भावनाएं आ रही थी, इस संसार के भोग काम आदि नाम कति न कति दा पालिता दुर्निदेशात तेषाम जाता मई न करुणा नत्रुपा नोपशांति उत्सृ जयितान अथ यदुपते सांप्रत लब्ध बुद्धे त्वाम आयात शरण अभयम माम नियुंक्षो आत्मदास्य। आचार्य गण ऐसे वचन कहते कि इस संसार में काम आदि नाम कति न कतिदा पालिता दुर्नि, इस संसार का भोग कितना भी किया जाए न त्रुपा नो पशांति, ना तो कभी संतुष्टि हुई है ना कभी उससे इंद्रिया विरक्त हुई है। तो इसीलिए प्रह्लाद महाराज के वचन यहां पर जो आ रहे कि तो बंधन का मूल कारण इस संसार के भोग है, संसार की कामना है। अब जो भगवत भजन में आ जाते हैं, भगवान की आराधना आदि करते हैं, भगवान के सन्मुख हो जाते हैं, आ जाते भगवान के चरणों में, तो भगवान उन्हें चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृति न अर्जुन, सुकृति कहे है वे, सुकृतिवान है, किसी भी भाव से हो किसी भी कामना से हो। चैतन्य शिक्षामृत में श्रील भक्ति विनोद ठाकुर चार भिन्न प्रकार के भक्तों का वर्णन किए, भय आशा कर्तव्य और राग। तो प्रारंभिक अवस्था में इस संसार में वैदिक निर्देशों को सुनकर पाप के परिणामों को जानकर भयवश जीव भगवान के शरण में आता है, भगवान का भजन न करे तो फिर नरक की यातनाएं भोगनी पड़ेंगी, भगवान का भजन नहीं करेंगे तो भयंकर कष्ट होंगे, भगवान का भजन नहीं किया तो फिर कोरोना भी आएगा तो और भी आने वाला है, आगे आगे देखो होता है। तो कोरोना तो अभी तो शुरुआत थी, किसी सन्यासी कहे हम सुन रहे थे द वर्ल्ड इज गोइंग टू बिकम मोर एंड मोर वर्स्ट, ऐसा नहीं कुछ सुधार होने वाला है, रोगों के भी प्रकार जो है दिन प्रतिदिन कोई विकृत और बहुत विकराल प्रकाशित हो रहे, लग रहा है कोरोना गया अभी कुछ, प्रभु जी अब हो गया ना, कई बार 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 पूछा जाता है, अभी तो और भी भयंकर आएगा कुछ, क्या आएगा वो नहीं जानते हम, परंतु जब कुछ आया है तो और अधिक विकराल रूपी भगवान ने अपना प्रकाशित किया इस संसार में। तो लोग भयभीत होकर भी आए भगवान के चरणों में तो ठीक है, परंतु उससे उत्कृष्ट कहा गया है भय से नहीं आशा से जब आते हैं कि संसार की कामना मन में है, परंतु संसार की कामना लेकर यदि भगवान के पास आए तो उससे उत्कृष्ट है, परंतु उसे भी बुद्धिमत्ता नहीं माना गया है। क्यों? ऐसे भगवान तो जिस तरह से हमारे शास्त्र कहते हैं नित्यो नित्यानाम चेतनश्चेतनानाम एको बहुनाम यो विदधाति कामान, न मांगने पर भी भगवान समस्त जीवों का पालन पोषण करते हैं। जिस तरह से एक माता अपने बालक का स्वप्न में भी अहित नहीं कर सकती, लाल ने ताड़ने मातुर न अकारुण्यम यथार्भके तद्वद एव महेशस्य निर्यंतु गुण दोषयो, कि चाहे मां लाड़ करे या चाहे मां मारती हो, चाहे मां कुछ भोजन दे या चाहे मां प्रताड़न दे, दोनों में ही मां की करुणा है, क्योंकि मां किसी भी अवस्था में बालक का अहित सोच ही नहीं सकती है। वैसे ही कहा जाता है कि भगवान जो सर्वसमर्थ है सब कुछ कर सकते हैं, वे भगवान की भी कुछ असमर्थता बतलाई जाती है, कुछ चीजें जो भगवान कभी भी नहीं कर सकते, कुछ भी हो जाए भगवान कर ही नहीं सकते। कौन सा है? तो उसमें सबसे प्रथम बात बजे थी, चाहकर भी भगवान कभी किसी जीव का अमंगल नहीं कर सकते। मंगल भवन अमंगल, मंगल भवन कहा गया है। तो भगवान मांगल्य से पूर्ण है, किसी भी अवस्था में किसी भी जीव का अमंगल अहित हो ही नहीं सकता। तो वास्तविक जो समझ में आ जाता है जिसे कि भगवान तो सभी का अगर पालन पोषण कर रहे तो क्यों भगवान से मांगा जाए। भगवान से मांगना ऐसे थोड़ी अज्ञता या मूर्खता है, जो भगवान के इस कारुण्य को नहीं जानते। यह वास्तविक कारुण्य भी नहीं है। एक भक्त की तो और थोड़ी उच्च दशा में जब वो कहे तो बोले कि भगवान असमर्थ है किसमें, तो भगवान किसी का अमंगल नहीं कर सकते, ये भी है। और दूसरी बात उन्होंने कही कि भगवान में दया बिल्कुल नहीं है, भगवान में किंचित मात्र भी करुणा नहीं है। एक भाव भक्त का राम, तो कैसे है उनको तुम करुणा सिंधु कहते हैं? नहीं, बोले भगवान में बिल्कुल दया नहीं है। क्यों? दया किसके लिए की जाती है? इस संसार में जो कोई इस संसार का जो पराया होता है, माँ अगर बालक को दुग्ध पान कराए तो बच्चा बोलेगा कि माँ ने बहुत बड़ी दया की मेरे ऊपर, वो तो अपना अधिकार समझता है ना। बालक कभी ऐसा नहीं कह सकता कि माँ ने कृपा की है, ऐसी कृपा हर रोज करना, मुझे दूध पिलाते रहना, वो अपना अधिकार मानता है। तो भगवान जैसे कहते ममई वांश जीव लोगे, समस्त जीव भगवान के है, तो सहज स्वाभाविक भगवान के हृदय में सभी के लिए हित की भावना है, एक माँ के समान। तो ऐसे माँ से वास्तविक कभी मांगना नहीं चाहिए कुछ। तो यहां प्रहलाद महाराज ऐसा कहने के लिए बहुत कुछ बातें है, उस बात को प्रकाशित कर रहे हैं जो भक्ति की बहुत उच्च अवस्था कही जाती है। श्रील रूप गोस्वामी भक्ति के 9 सोपान बताए, आदो श्रद्धा साधु संग भजन क्रिया अनर्थ नृत्य निष्ठा रुचि आसक्ति भाव प्रेम। उसके अंतर्गत रुचि अवस्था जिसको कहा जाता है, उस अवस्था में यह भाव प्रकाशित होता है जो यहां पर कहा जा रहा है। अन्य कई स्थानों पर वृत्रासुर की प्रार्थना हम सुनते हैं, कई स्थानों पर संसार के भोगों को त्यागा है, संसार के भोग त्याज्य प्रतीत हुए हैं भक्तों को। कब? जब उन्हें भगवान का विशेष रस प्राप्त हुआ है, जिसको कहते रुचि। श्री चैतन्य महाप्रभु कहते, न धनम न जनम न सुंदरीम कविताम वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनिश्वरे भवता भक्ति रहे तुकी त्वयी। नहीं चाहिए मुझे, मुझे भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु भक्त के रूप में भगवान से क्या मांगना चाहिए ये बतलाने के पूर्व क्या नहीं मांगना चाहिए वो कह रहे हैं। न धनम न जनम न सुंदरीम कविताम, ये नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए। अब कब कहा जाता है ये भी विशेष बात है। मान लीजिए मैं प्रसाद के लिए बैठा हूं और यहां पर ब्रह्मचर्य प्रसादम में आज है दाल, दालमा है, चावल है, सब्जी है, रोटी है, खिचड़ी है, मुझे परोसा जा रहा है, और अचानक मैं भक्त से कहूं नहीं नहीं मुझे रसगुल्ला नहीं चाहिए, बोले रसगुल्ला दे कौन रहा है, रसगुल्ला है ही नहीं तो कैसे देंगे। और मैं बार बार कहूं मुझे रसगुल्ला नहीं चाहिए तो मूर्खता लगेंगी ना। कब व्यक्ति कहेगा कि नहीं चाहिए? जो वस्तु आपको बहुत दी जा रही हो, जबरदस्ती दी जा रही हो, तब कहना था कि ये वस्तु नहीं चाहिए। तो जब भक्त उस अवस्था में पहुंचता है जब अनन्य चिंतयंतो माम ये जना पर उपासते, ऐसा अनन्य भजन होता है कि वास्तविक भगवान से कुछ भी नहीं मांगता वो। कई दृष्टांत है, कई कथा है, श्रीधर कोलबेचा है, श्रीवास ठाकुर है, माधवेंद्रपुरी है, कई भक्त है, भगवान थक गए कि अरे कुछ तो मांग, कुछ तो मांग ले, भक्त कहता नहीं चाहिए। भगवान भयभीत हो, अगर भक्त में ये अगर गुण आ गया कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए तो भगवान बहुत भयभीत हो जाते उससे। तो वहां पर भी जब श्रीधर कोलबेचा महाप्रकाश लीला में देखते हो कि श्री चैतन्य महापुरुष सभी भक्तों को दे रहे हैं, तो श्रीधर से कहते मांगो जो मांगना है, तो बोले क्यों मुझे आप धोखा दे रहे हो, मैं तुम्हारे धोखे में नहीं आने वाला हूं। क्योंकि जो मांग लेते हैं मतलब भगवान उनसे भगवान की उनके प्रति भी ड्यूटी नहीं रहती, भगवान मुक्त हो जाते हैं। परंतु जो नहीं मांगता है, जैसे वृंदावन में कई भक्त हुए, एक प्रसिद्ध भक्त का मुझे स्मरण हुआ, गिरिराज जी की तलहटी पर श्री वल्लभाचार्य का आश्रय लिए हुए कई भक्तों में जो अष्टछाप कवि कहलाते, उसमें एक भक्त जिनका नाम कुंभन दास, उनको भी निष्किंचन भक्त कहा जाता है कि बहुत निष्किंचन थे। उनका परिवार लगभग कितने 7 संतान थी उनकी, परंतु वस्त्र ऐसे फटे रहते थे कि शरीर को केवल ढकने मात्र के लिए रखे गए हैं। घर में ना तो कोई भोजन की व्यवस्था, ना तो कोई पात्र है, ना तो कोई बर्तन है, ऐसे फक्कड़ थे एकदम। भगवान जब उनके भक्ति को देखते थे, उनके भजन को देखकर भगवान चाहते थे कि मैं कुछ दूं इसे, तो समय समय पर भगवान भिन्न भिन्न लोगों को निमित्त बनाते थे। एक बार बादशाह अकबर ने बुला लिया उनको, मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूं। तो उन्हें वृंदावन से बाहर आना पड़ा, कौन से स्थान कहते हो, आगरा के पास आता है ना, जहां पर अकबर रुके थे, हाँ फतेह सीकरी को जैसा ना, हाँ उस स्थान पर आना पड़ा। तो अकबर बादशाह ने जब कहा कि मांगो, क्या मांगो, तो पहली तो ऐसी चीड़ आ रही थी कि मुझे वृंदावन से बाहर बुलाए क्यों, बार बार कह रहे मांगो, तो बोले नहीं चाहिए, बार बार कह रहे मांगो, तो बोले ठीक है एक ही चीज दे देना, जिंदगी में आइंदा कभी मुझे बाहर बुलाना मत वृंदावन से। फिर वो जब गोवर्धन में रहने लगे, नित्य प्रति भगवान के सामने गायन करते थे श्रीनाथ जी के सामने। और फिर एक समय की बात है कि वहां पर उनकी महिमा जब कई भक्त सुनने लगे, तो ये बात वहां पर जहां तो मुझे स्मरण, राजा मानसिंह थे ना, मानसिंह को भी पता चली, तो राजा मानसिंह भी वहां पर पहुंचे, देखा तो ऐसी टूटी फूटी झोपड़ी थी जिसके अंदर वो रह रहे थे। और वो जैसे ही, कहा जाता है कई भक्तों के लिए, सूरदास की भी कथा, कई भक्तों की कथाओं में सुनते कि भगवान का जब भजन करते थे, ऐसे अकिंचन भक्तों की विशेषता, ऐसे अकिंचन भक्त भगवान को चुंबक की तरह खींच लेते हैं, संसार की कोई कामना नहीं रहती। तो बताया जाता है जैसे ही गान करते थे कुंभन दास, छोटे से कृष्ण जो साख्य भाव था, वे तुरंत इनकी गोद में बैठकर इनके भजन को सुनते थे। तो जैसे स्नान आदि किया और भजन कीर्तन करने लगे, तो श्री कृष्ण ऐसे गोद में आकर बैठे और आपस में चर्चा हो ही रही थी, उसी क्षण जो है द्वार पर राजा मानसिंह आ गए। जैसे ही मानसिंह आए, तो तुरंत श्री कृष्ण अप्रगट हो गए, कृष्ण चले गए। तो तुरंत वो कहने लगा, अभी तो थे चले गए, अभी तो थे चले गए। अब मानसिंह को समझ में आ रहा हो क्या रहा है, बार बार अभी तो थे चले गए, अभी तो थे चले गए। तो देखा फिर कि घर द्वार पर कोई खड़े हैं, तो थोड़ा क्रोध फिर से आ रहा था कि मेरे भजन में डिस्टर्ब क्यों कर रहा है ये। तो उसी समय फिर बतलाया जाता कि उन्होंने फिर उनकी जो भतीजी, उन्हें कहा कि ठीक है थोड़ा आसन वगैरह लेकर आओ, और फिर स्नान हुआ है तो तिलक भी लगाना है, तो आसन लेके आओ ताकि राजा को बैठा सके। तो भतीजी ने कहा कि क्या कहते, पड़िया कहते ना, कि पड़िया आसन खा गई और तिलक पी गई, पड़िया कहते हैं भैंस का जो बच्चा होता है ना, शायद उसको ही कहते हैं। तो आसन खा गई, मतलब आसन मतलब वो बाहर खेत से कुछ घास लेकर आते थे और उसी को बिछा दिया जाता था, उसका आसन घर पे बनता था, और पत्तों में पानी लेकर वो तिलक लगाते थे, ऐसा तो जीवन था। मतलब तिलक के लिए कोई आचमन पात्र भी नहीं था और बैठने के लिए कोई चटाई भी नहीं थी। यहां तो हम इतने दुनिया भर के इनर से, स्वेटर से, जैकेट से लेके वृंदावन में जो रहे, कैसे रहे वो विचार किया जाए। तो जो भी हो, जब देखा मानसिंह ने ऐसा वैराग्य, कुछ भी नहीं इसके पास, तो बोले कि हे महाराज जी, मैं आपके पास आया हूँ, आपकी सेवा करना चाहता हूँ। तो इनको तो चीड़ आ रही थी क्योंकि भगवान चले गए थे, तो बार बार ये कहना, नहीं नहीं कुछ नहीं चाहिए मुझे, जाओ जाओ जाओ, नहीं नहीं कुछ मांग लीजिए। तो पुनः वैसे ही वचन कहे उन्होंने कि कुछ चाहिए, तो बोले हाँ बस एक ही चीज की, जिंदगी में अपना मुंह कभी मत दिखाना तुम। राजा मानसिंह चले गए। जैसे ही राजा मानसिंह चले गए, अगले क्षण श्री कृष्ण कहने आके फिर से गोद में बैठ गए। अब जैसे ही गोद में बैठे, तो फिर उसने तुरंत बोला कि अरे कहाँ चले गए थे। तो तुरंत श्री कृष्ण कहा, धत तेरे की। बोले क्या हुआ। अरे मैं बार बार भक्तों को भेजता हूं तुम्हारी इच्छाओं को, मतलब तुम्हें कुछ मैं ऐश्वर्य दे सकूं, कुछ भोग दे सकूं, तुम बार बार ठुकरा देते हो। तो तुरंत कुंभन दास ने कहा धत तेरी की। बोले तुमने क्यों कहा धत तेरी की? बोले कि एक प्रश्न का उत्तर दे दो श्री कृष्ण ने। तो बोले क्या? बोले तुम बार बार किसी को भेजते हो मुझे संसार का भोग देने के लिए। बोले हाँ। अच्छा एक बात बताओ, ये राजा मानसिंह आए थे? बोले हाँ। इन्होंने जो कुछ मुझे देना चाहते थे, मुझे तो राज्य भी दे सकते थे, गांव दे सकते थे, संपत्ति दे सकते थे, तो ये जो देना चाहते थे अगर मैं ले लेता तो क्या तुम मेरे गोद में फिर से आके बैठते? तो कृष्ण की आंखों में अश्रु आ गए और तुरंत श्री कृष्ण लिपट गए उनसे। तो ऐसा ही है, जो भक्तों का तो ये है कि वास्तविक भुक्ति मुक्ति स्पृहा विहीन जे भक्त, श्री भक्तों ठाकुर भी कहते हैं। संसार क्या मांगा जाए? संसार को मांगना तो वास्तविक कांच के टुकड़े मांगने के समान है। तो इसीलिए प्रहलाद महाराज यहां पर कह रहे हैं वृत्ति लक्षण जिज्ञासु, कि भगवान एक तरह से परीक्षा भी ले रहे थे, भगवान दिखलाना चाहते थे कि संसार का सब भोग भी यदि मेरे भक्त के सामने आ जाए तो उस ऐसे निष्किंचन अवस्था जो होती है जिसको रुचि कहा है यमुनाचार्य, जिसके विषय में कहते हैं यद अवधि मम चित्त कृष्ण पदारविंदे नव नवरस धामनी उद्यतुम रंतुम आसित। जब वो श्री कृष्ण के नाम रूप गुण लीला में एक रस प्राप्त होता है, जब रुचि जागृत हो जाती है, रुचि का परिभाषा शिल प्रभुपाद क्या कहते हैं? रुचि मतलब, जैसे शिल प्रभुपाद ने कहा कि रुचि मतलब क्या, तो बोले कि कोई भक्त अगर 16 माला जप कर रहा है और 16 माला जप होते बार मन में विचार आए 16 ही क्यों, 16 लाख क्यों नहीं, तो उसको रुचि कहा उन्होंने। प्रभुपाद जी को पूछा व्हाई ओनली 16, व्हाई नॉट 16,000, व्हाई नॉट 16 मिलियन, तुंडे तांडे निम्बितुम तुंडे तांडे विनी रतिम वितनुते तुंडावली लब्ध है। इसको कहा गया है रुचि की अवस्था। ऐसी जब अवस्था आती है जिसमें भगवान श्री कृष्ण का नाम उच्चारण करते हैं, भक्तिनो ठाकुर कहे इस बात को, आप नाम उच्चारण कर रहे हो, नाम के साथ में भगवान का रूप और गुण चित्त में स्वतः प्रकाशित होने लगता है। जैसे आपने कृष्ण बलराम कहा और आंखें बंद हुई तो आप तो यहां पर सब सिद्ध संत है, आपकी बात और है। आंखें बंद करो तो कृष्ण बलराम का रूप प्रकाशित होने लगे। ऐसी जब अवस्था होती है, ऐसी अवस्था में यह समस्त भोग आदि जो कहे जा रहे हैं वो सहज त्याज्य हो जाते हैं। परंतु कब होते हैं? जब बतलाया जाता है कि आर कभी निताई चांदेर करुणा होई बे संसार वासना मोरे कब तुच्छ हो बे। तो नित्यानंद प्रभु आदि गुरु, जब वास्तविक गुरु का आश्रय लिया जाता है और गुरु की इच्छा में अपनी इच्छाओं को तिरोहित किया जाता है, गुरु की प्रसन्नता में अपनी प्रसन्नता को तिरोहित जब किया जाता है और वह गुरु का हृदय आह्लाद से भर जाए। श्री सचिनंदन महाराज अपने एक ग्रंथ में इस बात को बतलाए हैं, जब साधु गुरु का प्रसन्न करेंगे और साधु गुरु को प्रसन्न करके उसके हृदय में आह्लाद जब आ जाएगा। अभी हम जो कर रहे हैं उसको वैदी भक्ति कहते हैं ना, वैदी भक्ति। वैदी भक्ति कितनी भी की जाए, नाम जप आदि किया जाता है, कोटि वर्ष करी यदि कृष्णेर भजन, श्री भक्ति ठाकुर नवदीप धाम आत्मा कहे कि करोड़ों वर्ष भी श्री कृष्ण का भजन किया जाए फिर भी रुचि की अवस्था पे नहीं पहुंचा जा सकता। रुचि, नाम रुचि तब भी नहीं प्राप्त हो सकती। तो वैदी भक्ति से रागानुगा, वैदी के द्वारा रुचि में कैसे पहुंचा जा सकता है? तो श्री सचिनंदन महाराज इस बात को बतलाते हैं कि जब वैदी करते करते साधु गुरु, ऐसा निष्किंचन जो साधु गुरु है श्रील प्रभुपाद है, इनका पूर्ण रूपेण आश्रय लेते हैं, उनकी सेवा करते हैं, ऐसी सेवा जो उनके हृदय में आह्लाद लाए। कब हृदय में आह्लाद होता है? जब उनके अनुकूल हम बन जाते हैं। अभी हमारी कैसे सेवा होती है? हमारे अनुकूल हम सेवा करते हैं, हमको जो अच्छा लगेगा वो हम करेंगे। परंतु साधु गुरु को जो प्रसन्न करने वाली जो क्रिया जब की जाती है, वह करने से बतलाया जाता है कि उस साधु का हृदय प्रसन्न हो जाता है। और जैसे ही साधु के हृदय में प्रसन्नता होती है, उसके हृदय में एक संकल्प आता है इस भक्त को भगवान की कृपा मिले, तो उसी क्षण बतला जाता है व्यक्ति, मतलब बूंद बूंद कह सकते हैं, अल्प मात्रा में वैदी से रागानुगा में प्रवेश करने लगता है इस प्रक्रिया के द्वारा। तो उसी अवस्था को यहां पर प्रह्लाद महाराज बता रहे हैं। अच्छा, क्षमा कीजिए। हरे कृष्ण, हरे